एहेस्केल अध्याय 15। एहेस्केल अध्याय 15 में पद 1। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सब वृक्षों में अंगूर की लता का क्या श्रेष्ठता है। आपको ध्यान होगा कि परमेश्वर ने यशाया अध्याय 5 में एक दृष्टांत कहा था। उसने एक दाख की बारी अर्थात इसराइल को लगाया था। उसने उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और दाख रस निकालने की चक्की लगाई। तब वो फल लेने आया, तब उसे वहां जंगली अंगूर मिले। अब वो क्या करता है? वो बाड़े को गिराकर जंगली पौधे उगने देता तथा अंगूरों को बर्बाद होने देता है। वो उसकी चिंता छोड़ देता है, वो फिर लौटकर नहीं आएगा। इसराइल के लिए वो यही कहता है कि वो उसकी दाख की बारी है और उसने उनके लिए क्या क्या नहीं किया, परंतु उसे फल प्राप्त नहीं हुए। यीशु ने यूहन्ना 15 में कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता माली है, हर एक डाली जो मुझ में है फल लाती है। तुम डालियां हो। परमेश्वर का प्रमुख उद्देश्य ये है कि आप फल लाएं। दाखलता की एक ही खूबी है कि वो फल लाती है। अध्याय 15 का यही सारांश है। यदि वो फल नहीं लाती है तो वो किसी काम की नहीं रह जाती। एहेस्केल अध्याय 15 पद 3। क्या कोई वस्तु बनाने के लिए उसमें से लकड़ी ली जाती? क्या आप दाखलता की लकड़ी से कुछ बना सकते हैं? आप उस पर बोझ भी नहीं डाल सकते। आप उसको खूंटे के रूप में भी उपयोग नहीं कर सकते। वो अंदर से खोखली होकर कागज की सी हो जाती है। वो लकड़ी के काम की भी नहीं रहती है। एहेस्केल अध्याय 15 पद 4। वो तो ईंधन बनाकर आग में झोंकी जाती है, उसके दोनों सिरे आग में जल जाते। वो जलने के योग्य भी नहीं रहती है। वो एक ही काम की होती है कि फल लाए। आपसे एक ही अपेक्षा की जाती है कि आप फल लाए। यीशु ने कहा, यूहन्ना अध्याय 15 पद 8, मेरे पिता की महिमा इसी से है कि तुम बहुत फल लाओ। परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन फलदायी हो। प्रभु के लिए धार्मिकता के फल। एहेस्केल अध्याय 15 पद 5 और 6। देख, जब वो बनी थी तब भी वो किसी काम की ना थी, फिर जब वो आग के ईंधन होकर भस्म हो गई है तब किस काम की हो सकती है? सो प्रभु यहोवा यूं कहता है, जैसे जंगल के पेड़ों में से मैं अंगूर की लता को आग का ईंधन कर देता हूं, वैसे ही मैं यरूशलेम के निवासियों को नाश कर दूंगा। वे फल नहीं लाए, अतः वे किसी काम के नहीं हैं, इसलिए मैं उन्हें भूसे की तरह जला दूंगा। एहेस्केल अध्याय 15 पद 7 और 8। मैं उनके विरुद्ध हूंगा और वे एक आग में से निकलकर फिर दूसरी आग की ईंधन हो जाएंगे, और जब मैं उनसे विमुख हूंगा तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। और मैं उनका देश उजाड़ दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे विश्वासघात किया है। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर ने यशया के मुख से वचन भेजा कि उसकी प्रजा दाखलता स्वरूप है, परंतु वो फल नहीं लाई और उसके कारण वे उजड़ जाएंगे। एहेस्केल भी यही कहता है कि वे फल नहीं लाए और वे किसी और काम के है ही नहीं। अब वे रखने लायक नहीं है, अतः उन्हें नाश किया जाए। उनका कोई मूल्य नहीं है, उनका नाश कर दो। आपको ध्यान होगा कि यीशु ने एक दृष्टांत में कहा था कि एक पेड़ फल नहीं लाता था तो उसके स्वामी ने कहा कि उसे काट दिया जाए। वो जगह क्यों घेरे? इस पर उसके सेवक ने कहा, स्वामी मुझे एक वर्ष और दे, मैं उसे खाद पानी देकर देखूंगा। यीशु का प्रश्न तो ज्यों का त्यों है, यदि फल नहीं लगता तो पेड़ जगह क्यों घेरे? ऐसे व्यक्ति के जीवन से क्या लाभ जो फल नहीं दर्शाता? परमेश्वर अपनी महिमा के निमित्त फल चाहता है, अतः अपने जीवन का निरीक्षण करो। क्या आप परमेश्वर के लिए धार्मिकता के फल लाते हो? गलतियों 5:22 में पौलुस कहता है, आत्मा का फल प्रेम है। परमेश्वर आपके जीवन में फल खोजता है, वो प्रेम को खोज रहा है। उसके लिए प्रेम और एक दूसरे के लिए प्रेम। परमेश्वर आपके जीवन में कितने फल पाता है? परमेश्वर अपनी बारी में फल लेने आता है, आनंद मनाने आता है, परंतु वो पाता है कि फल जंगली है, अंगूर खट्टे हैं और किसी काम के नहीं हैं। कितनी बार परमेश्वर हमसे सहभागिता करने आता है कि हमारे प्रेम का अनुभव करे और प्रेमपूर्ण संबंधों की अभिव्यक्ति देखे, परंतु वो पाता है कि उसकी इच्छा के अनुसार मेरा जीवन नहीं चलने के कारण उसका मन खट्टा है, मेरा स्वभाव उसके प्रति कटु है। ये कैसी दुख की बात है कि जब परमेश्वर प्रेम, सहभागिता और मित्रता की खोज में हमारे पास आता है, तब वो हमारे स्वभाव में कटुता पाता है। परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन फलदायी हो और उसकी महिमा के निमित्त फल लाए। सत्य तो यह है कि इसके अतिरिक्त आपका मूल्य है ही नहीं, दाखलता का अन्य कोई उद्देश्य नहीं है। यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हूं। कहने का अर्थ यह है कि फल लाओ, आपका जीवन परमेश्वर के लिए फलदायी हो। आइए प्रार्थना करें। पिता, हमारी सहायता कर कि हम तेरे आत्मा से और तेरे प्रेम से ऐसे भर जाए कि तू जब भी अपनी दाख की बारी में आए, तुझे भरपूर फसल प्राप्त हो। प्रभु, हम तेरे प्रति अपने प्रेम को, अपनी आराधना को और सब उपकारों के लिए जो तूने हम पर किए हैं, उनके लिए तेरा स्तुति गान करते हैं। तो हमारी सहायता कर कि हम अपने प्रेम को सब लोगों में, तेरे प्रति अपने आभार को व्यक्त करने में अधिक प्रभावी हो। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।